Shanti.
11th November 1987. शुभ चिंतक बनना, यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशंस वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभव में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभचिंतक मणि, शुभचिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। शुभचिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं से को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभचिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभचिंतक मणियां व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभचिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। 10th November 1987 बाबा कह रहे हैं, शुभचिंतक बनना है, यही सहज रूप की क्या है, मनसा सेवा, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। किसके प्रति करनी है? सबके प्रति, हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्मा। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशंस वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। चिंतामणि आत्मा अर्थात बाबा चिंतामणि किसको कहते हैं? संसार की आत्माओं को चिंतामणि। और चिंतामणि किसे कहा जाता है संसार में? जो चिंता नाशक है। बाबा जब कहते हैं चिंतामणि अर्थात चिंताग्रस्त आत्माएं, और चिंतामणि वास्तव में संसार में वह कल्पित वस्तु या पत्थर कहेंगे जिसकी प्राप्ति के बाद सर्व चिंताएं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो चिंतामणि है। जैसे पारस पत्थर होता है, जैसे पारस मणि होता है, वैसा चिंतामणि, मतलब जिसके पास चिंतामणि जिसे मिल जाता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है।
देवी का नाम है चिंतपूर्णी।
चिंतपूर्णी
ज्वाला जी के बिल्कुल पास में।
अच्छा, जम्मू?
नहीं, ज्वाला जी हिमाचल।
हिमाचल
चिंतपूर्णी।
तो बाबा जब चिंतामणि शब्द मुरलियों में जब आता है तो उन आत्माओं के लिए आता है जो चिंता से भरी हुई है, चिंताओं में डूबी हुई, चिंताओं से ग्रस्त। परंतु वास्तव में चिंतामणि शब्द जो है वो उस पत्थर के लिए कहा जाता है कि जिसे प्राप्त होकर सारी चिंताओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गणपति का भी, हाँ, मतलब वही देवता या वस्तु या पदार्थ या पत्थर जिसे प्राप्ति के बाद चिंता सर्व दुख से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशंस वायुमंडल को वा चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभव में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। संसार में जो भी प्राप्ति है वो अल्पकाल की है, क्षणिक है, और जो भी कुछ वो करते हैं वो अंततोगत्व चिंता में परिणित हो जाता है, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा। जैसे उस दिन भी कहा था, ये संसार क्या है? असार दुखालय। कहां से दिखाओ केक को, कहां से दिखाओ, क्योंकि केक बनाने वाले ने बता के रखा है।
उस दिन तोले में भी केक ही था ऊपर।
अच्छा। क्योंकि केक बनाने वाले ने खुद बनाया बताया कि ये कैसा बना हुआ है, इसलिए थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव वह व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, क्या करते हैं वो, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। जो भी वो कुछ करता है चिंता उत्पन्न होती है उससे, चाहे प्यार भी कितना करे, केयर भी कितना करे, अटेंशन भी कितना दे या कुछ भी करे, उससे चिंता का निर्मूलन, चिंता से मुक्ति नहीं होती है, चिंता ही उत्पन्न होती है उससे। ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। ऐसी जो आत्माएं शुभ चिंतक, उनके थोड़े समय का संपर्क भी क्या होता है, अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक मणिया, हम सब कौन है, शुभ चिंतक मणिया, और संसार की आत्माएं क्या है, चिंता मणिया। हम हैं शुभ चिंतक मणि और वो है चिंता मणि। इसलिए आप शुभ चिंतक मणिया व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं, वो लोग क्या अनुभव करते हैं, संसार की आत्माएं क्या अनुभव करती है, कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। तो केवल शुभ चिंतन करना या शुभ चिंतक बनना, ये भी क्या है, एक मनसा सेवा है। कल कहा ना, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, एक तो करो, 24 घंटे पर करनी है सेवाधारी। तो केवल शुभ चिंतन भी करना, ये भी एक सेवा है। तो यहां बाबा ने बहुत अच्छी बात जो कही है, ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। चला कल्प तरुण से आरव, चेतना चिंता मणि से गाव, बोलते चे अर्णव पीयूषा चे मार्तंड जे तापहीन, चंद्रमे जे अलांछन। ये संसार की जो महान आत्माएं, इनके लक्षण बताए हैं। चला कल्प तरुण चे आरव, एक कल्प तरु यदि किसी को मिल जाए तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और परंतु ऐसी जो आत्माएं संसार की महान आत्माएं, वो आरव जंगल के जंगल है, जैसे कल्प तरु का जंगल, चलता फिरता वो भी, उस दिन कहा ना चलती फिरती लाइब्रेरी, ऐसे शिक्षक। चेतना चिंता मणि से गाओ, एक चिंता मणि मिल जाता है तो सारी इच्छा चिंता से मुक्ति हो जाती है। ये गाव है ऐसी आत्मा, बोलते जे अर्णव, जो बोल रहे वो सागर है, किसका, पीयूषा चे अमृत का सागर। ऐसी आत्मा है संसार को, संसार की इसको बहुत 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 जरूरत है ऐसी आत्माओं की। थोड़े से भी संपर्क से क्या हो जाता है, आत्माओं की चिंता मिट जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है जो सभी को पता है? थोड़े से संपर्क से सामने की आत्माओं को राहत सुकून मिल जाता है। अच्छा बाबा कौन सा, दादियों के सामने जाते हैं तो हल्का महसूस करते हैं, या बाबा के सामने जो भी आता था वो विरोधी भाव से अगर आता है तो सहयोगी बन जाता था। और मम्मा के सामने, बाबा के सामने, दादियों के सामने, यज्ञ में तो ऐसे बहुत उदाहरण है, परंतु यज्ञ से बाहर द्वापर से अब तक का जो काल है उसमें भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जो उदाहरण बार बार कहा जाता है महाभारत का कौन सा, थोड़े से संपर्क से आत्माओं को राहत मिल गई जिससे, युधिष्ठिर का जीवन में एक ही पाप किया था तो उस एक पाप के लिए एक बार झूठ बोलना पड़ा था या बोला था, उसके लिए कुछ समय के लिए नरक जाना पड़ा। कुछ समय नरक रहने के बाद युधिष्ठिर को जब देवदूत लेने आए कि चलो समय पूरा हुआ अब तुम्हें स्वर्ग की ओर चलना है, तो सारे जो नरक निवासी थे वो कहने लगे कि थोड़े देर और रुको, आपके यहाँ केवल उपस्थिति से हमें राहत मिल रही है, वहां की जो पाप आत्माएं थी, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं थी, तो महान आत्मा या ऐसी शुभचिंतक मणि आत्माओं के संपर्क से थोड़े समय भी अगर दूसरी आत्माओं के संपर्क में से आ गई आत्माएं तो उन आत्माओं को सुकून राहत चिंता से मुक्ति का अनुभव होता है। इसके लिए युधिष्ठिर कहता है कि मुझे अगर मेरे यहां उपस्थित रहने से इन आत्माओं को राहत मिल रही है तो मैं यहीं रहूंगा। वैसे ही बंगाल में एक जिन्हें फादर ऑफ बंगाली लिटरेचर थिएटर कहा जाता है, गिरीश चंद्र घोष, बहुत बड़े उपन्यासकार, थिएटर राइटर, मतलब वो इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति था गिरीश चंद्र घोष कि वो जब उपन्यास लिखता था वो डिक्टेट करता था और सामने वाला जो रहता था उसको लिखना पड़ता था, वो तीन तीन पेंसिल रखता था सामने वाला सेक्रेटरी लिखने के लिए, इतना फास्ट वो डिक्टेट करता था। रात रात में एक एक नाटक, ऐसे कितने 80 से 100 नाटक उसने लिखे है, प्ले किए है, इतनी सारी उसमें योग्यता है, इतनी सारे उसकी बुद्धि इस तरह से काम करती थी कि कोई व्यक्ति पेन से नहीं लिख सकता था, क्योंकि पेन में इंक में डुबो तब तक वो पॉइंट मिस हो जाती थी, इतना वो फास्ट उसकी बुद्धि काम करती थी। परंतु वो बहुत, उसकी पत्नी का देहांत, दो पत्नियों का देहांत, उसके बच्चों का की मृत्यु, बहुत दुख, और उसके बाद धीरे 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 वो ड्रंकर्ड जिसको कहते हैं कि बहुत दारू पीने वाला बन गया और नास्तिक बन गया धीरे धीरे, तो यक्कड़ उसने बहुत सारे प्ले किए और सारे धार्मिक प्ले करता था, कभी रामायण का, कभी महाभारत का, चैतन्य लीला करके जब उसने प्ले किया था एक बार, उस सभा में ऑडियंस में एक व्यक्ति बैठा रामकृष्ण परमहंस, और गिरीश चंद्र घोष का और रामकृष्ण परमहंस की जो मुलाकात है, थोड़े समय की वो मुलाकात, परंतु उस मुलाकात ने गिरीश चंद्र घोष को पूरा बदल दिया। वो नास्तिक बन चुका था, जीवन के प्रति नकारात्मक हो गया था संपूर्ण रीति से, उसके जीवन में इतने सारे दुख है, प्रसिद्धि तो बहुत थी उसकी, प्रतिभाशाली भी बहुत था, फादर ऑफ बंगाली थिएटर उसको कहा जाता है, नाटकशाला का पिता है वो बंगाल में, जितने प्ले उसने किए है शायद ही किसी ने किए होंगे, जितनी कहानियां प्ले उपन्यास जो कुछ उसने लिखा है और किसी ने नहीं लिखा, परंतु जीवन के दुख ने उसे, जीवन में की घटनाओं ने इतना दुखी कर दिया था कि जब पहली बार वो संपर्क में आया तो उसे तो आश्चर्य हुआ, ये कौन सी अवस्था है इस व्यक्ति की, ऐसी भी अवस्था हो सकती है, ऐसी भाव दशा, ऐसी ईश्वर में तन्मय अवस्था कि वो तो दंग रह गया, हैरान हो गया वो देखकर। और फिर दिखाया है दोनों का संपर्क थोड़ा बड़ा। पहले तो उसने बहुत हंसी उड़ाई उसकी उनकी, और बाद में जब उसने कहा कि मैं कुछ भी साधना नहीं कर सकता, मैं इतने पाप किए, मैंने इतने पाप किए, मैं क्या करूं। अटॉर्नी शब्द है कि किसी को अटॉर्नी दी जाती है ना, क्या कहते हैं उसे, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो रामकृष्ण कहते हैं कि तू पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दे, तुम्हारे जीवन की मेरे प्रति समर्पित हो जाए। फिर मतलब बहुत अच्छा दोनों का वार्तालाप है कि जिसमें दिखाया कि इस एक व्यक्ति के संपर्क में आते ही और थोड़े समय के लिए उस गिरीशचंद्र घोष का पूरा जीवन ही बदल गया। कहां वो डूबा रहता था 24 घंटे दारू में, और कहां उसका जीवन ही परिवर्तन हो गया, भगवत भक्ति का जन्म हुआ हृदय में। तो ये संपर्क है थोड़े समय के लिए, इसके लिए हम जितनी हमारी श्रेष्ठ भावनाएं होगी उसका असर होगा। आत्माओं को चार सूक्ष्म शक्ति की आवश्यकता है। संडे की मुरली कौन सी, उनके पास वाणी की शक्ति बहुत है, साधनों की शक्ति बहुत है, उन्हें वो नहीं दो जो उनके पास है। उन्हें क्या चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ वृत्ति, सहयोग की दृष्टि, स्नेह की दृष्टि, ये चीजें उन्हें चाहिए। वैसा एक दूसरा और एक उदाहरण है, बंगाल का ही उदाहरण। दो भाई थे, जगई और मदई। ऐसा शायद ही कोई पाप था जो उन दोनों ने नहीं किए। हर प्रकार का पाप किया था, व्यभिचार से लेके तो लोगों को तंग करने से लेके तो नशे से लेकर तो हर प्रकार का। परंतु जैसे ही चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य नित्यानंद, सबसे पहले तो नित्यानंद के संपर्क में ये दोनों आए। जब नित्यानंद सड़कों पर घूमते थे, नाडिया बंगाल या उड़ीसा के उधर है, तो ये दोनों भाई आए और उसकी बहुत हंसी उड़ाने लगे, उसको बहुत उसका उपहास करने लगे। वो जो जगई था वो तो इतना क्रूर था कि उसने एक मटकी थी वो जाके नित्यानंद के सर पे पटक दी, पूरा खून से लहूलुहान हो गया। और फिर वहां पे चैतन्य महाप्रभु आए, इस तरह की कहानियां दिखाते हैं चक्र, वो तो जैसे श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। तो दिखाया है कि गौरंग निताई, चैतन्य महाप्रभु और उनका शिष्य नित्यानंद को गौरंग निताई कहा जाता है। गौरंग और निताई के जैसे ही संपर्क में ये दोनों भाई आए, उनका वो क्रूर स्वभाव, उनका वो दुष्ट स्वभाव एकदम से परिवर्तन हो गया। थोड़े समय का वो संपर्क है, थोड़े समय का इनका वार्तालाप है, चरणों में गिर गए और उनके साथ हरे कृष्ण का जाप करने लगे। थोड़े ही समय का संपर्क, ऐसी जो आत्माएं हैं। हाँ, अभी तीसरा उदाहरण है गौतम बुद्ध के जीवन के, दो उदाहरण है। एक तो अंगुलीमाल, जिसकी यहाँ पर एक दो बार चर्चा हमने की थी कि कैसे उसके संपर्क में आते ही उसका वो हिंसक भाव, उसने देखा कि सब मुझसे भयभीत है परंतु ये व्यक्ति मुझसे बिल्कुल भयभीत नहीं है, उसे जैसे कोई भय ही नहीं, ये अभय की अवस्था को प्राप्त हुआ, कौन व्यक्ति है। और उसके संपर्क में आते ही उसका वो पूरा हिंसक भाव समाप्त हो गया, एक धम्मो सनंतनो। इस भाव जैसे कि उसकी शरण में आ गया हो। वैसा ही दूसरा उदाहरण आम्रपाली, उसका भी कैसा जीवन था, परंतु जैसे ही बुद्ध के संपर्क में वो आई, जीवन परिवर्तन हो गया पूरा के पूरा। वैसे ही वाल्मीकि का भी दिखाते हैं, कहां वो जीवन, वो डाकू था रत्नाकर दाह, जैसे ही नारद के संपर्क में आया वैसे ही जीवन बदल गया। उसे तो यह भी नहीं पता था तपस्या कैसे की जाती है, मंत्र जाप कैसे किया जाता है, उल्टा जाप किया, मारा और इतना श्रेष्ठ। ये सारे उदाहरण है संसार के कि जैसे ही कोई आत्मा महान आत्मा के संपर्क में आती है, चाहे महानात्मा उनसे कुछ कहे या न कहे, केवल वह संपर्क थोड़े समय का भी आगे की आत्मा को पूरा के पूरा परिवर्तन कर देती है। अभी तो कुछ बोला ही नहीं है, कुछ कहा भी नहीं है, फिर भी परिवर्तन, ये कौन सी पावर है? गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया। गुरु बैठा हुआ है, कुछ कह नहीं रहा है, मौन है, ये मौन का ही व्याख्यान है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, और इतने सारे शिष्य है, शिष्य कुछ पूछ भी नहीं रहे, उनके मन में शंकाएं बहुत है, प्रश्न बहुत है, परंतु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया। वो पावर, वो दृष्टि की शक्ति जिसको बाबा कहते स्नेह की दृष्टि, केवल वह दृष्टि, केवल वह शुभ वृत्ति, केवल वह श्रेष्ठ संकल्प, केवल वह मन की ऊंची अवस्था आत्माओं को संपूर्ण परिवर्तन कर देती है। आत्माएं सुनना नहीं चाहती है, संडे की मुरली क्या चाहती है? अनुभव करना चाहती है। टेंशन से मुक्त कैसे हो जाए, स्ट्रेस कैसे कम हो, इसके लेक्चर्स की संसार में कमी नहीं है। जितने चाहो इसके ऊपर लेक्चर देने वालों की भी कमी नहीं, हजारों लेक्चर्स है, लिखने लेखों की कमी नहीं है, किताबों की कमी नहीं है। मार्केट में जाओ तो हजारों किताबें हैं इस तरह की लिखी हुई, हाउ टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, हजारों लोगों ने लिखी है, परंतु इसके बावजूद भी स्ट्रेस तो बढ़ रहा है, चिंताएं तो बढ़ रही है, चिंताग्रस्त है आत्माएं। लेक्चर देने वालों को ही थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो गया लेक्चर में, अगर वहां लेक्चर देने गया और माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर लेक्चर देने गया और लेट हो गया, लेक्चर देने जा रहे और गाड़ी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वही स्ट्रेस में, वही चिंता में। अगर उसका लेक्चर था और किसी और को चांस दिया गया, उसका लेट कर दिया गया, उसे कम टाइम दे दिया गया, ये सब चिंताओं को जन्म देता है। व्यक्ति जीवन भर चिंताग्रस्त रहता है, एक रीति से वो चिंता उसे छोड़ती नहीं है, उसे पता ही नहीं वो चाबी है कहां चिंता से मुक्ति की, कहां है वो चाबी, ढूंढते रहता है वो, पर कभी मिलती नहीं है उसको। यहां इसके लिए बाबा ने क्या कहा देखा, दोनों के लिए कहा, चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो, मतलब ब्राह्मण आत्माओं को भी आवश्यक है। हम जो भी करते हैं जीवन की जो यात्रा है, ये जो दौड़ है, चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते, परंतु चिंताओं से ग्रसित, चिंताओं से भरे, वो चाबी जो है, वो कुंजी जो है, पता नहीं कहां गुम हो गई, कहां खो गई। भारत से एक बार चार नवयुवक मौज मस्ती करने के लिए विदेश जाते हैं अमेरिका में, और वहां जाने के बाद एक बहुत बड़ा होटल, सोचते हैं अभी मस्ती करने आए हैं, मौज मस्ती करनी है, छुट्टियों के दिन है, बहुत पैसे बहुत है, क्या करें। तो एक 100 मंजिला होटल होता है, उस पे एक कमरा लेते हैं, 100-storied होटल, और उसमें भी कौन सा लेते हैं, जो सवा रहता है टॉप का वहां पर, और सुबह लेते हैं और फिर निकल जाते हैं घूमने फिरने, सारे दिन भर इधर उधर घूमना फिरना, मौज लुफ्त जवानी का लुफ्त उठाना जिसको कहते हैं, इधर उधर घूमते हैं और एकदम थक जाते हैं, रात को 10-11-12 बजे तक आते हैं, और आने के बाद देखते हैं कि जो लिफ्ट है वो काम नहीं कर रही है, और वहां कोई है भी नहीं, मैनेजर वगैरह कोई नहीं है, वो सिक्योरिटी वाला बताता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो वो लोग सोचते हैं अभी कैसा करें, परंतु क्योंकि वो थोड़ा एंटरटेनिंग मूड में रहते हैं, थके तो रहते हैं, शरीर थका हुआ है, फिर भी सोचते हैं अब चढ़ना तो है, नहीं तो जाएंगे कहां। तो वो कहते हैं कि चलो एक इधर उधर की कहानी, इधर उधर की बातें, या जो कुछ किया जीवन में, कॉलेज की बातें, यहाँ की बातें, सब करते करते गाना गाते 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 ऊपर तक चढ़ जाएंगे। तो चढ़ते चढ़ते गाना गाते गाते एक घंटा में ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद उसका जो एक मित्र होता है कि मैं आपको एक ऐसी बात अब बताने चाहता हूँ कि वो यदि तुम लोग सुन लो तो तुम्हारे पैर की जमीन खिसक जाएगी। तो कहता है कौन सी बात है? उनसे चाबी कार में रह गई है नीचे। ये कहानी उन मित्रों की नहीं है, मनुष्य मानवता की कहानी है, मनुष्य जाति की कहानी है। खुशी की चाबी पता नहीं कहां बंद है और हम चढ़े जा रहे हैं ऊपर ऊपर, सोच रहे वहां है, वहां जाके आराम करेंगे, और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है चाबी है ही नहीं, क्या करें, कहीं तो रह गई है बंद किसी कार में। तो संसार में चिंताएं,
चिंता बढ़ गई, नोट बंद हो गए,
500 और 1000 की नोट। तो चिंताओं के नए नए कारण है, कोई एक चिंता नहीं है व्यक्ति को, एक चिंता छूटती है तो दूसरी, दूसरी छूटती है तो तीसरी। जैसे कहा ना हमेशा कि झाड़ियों से जब जाते हैं तो एक जगह पैर कहीं या कपड़े कहीं फंस जाते, उधर से निकालने जाओ तो दूसरी जगह फंसते, वहां से निकालो तो दूसरी जगह फंसते। परंतु मनुष्य की गति भी उस घोड़े की जैसी है, जो कांटे वाले पत्तियां, एक झाड़ है जिसमें कांटे हैं और पत्ते हैं, वो पत्तों को खाता है, चुपता है पर छोड़ता नहीं है खाना, उसका ही खून निकलता है और खून अंदर जाता है, उसको लगता है शायद पत्तियों का ये स्वाद है। जैसे उस कुत्ते की स्थिति कैसी होती है, हड्डी को पकड़ता है, सूखी हड्डी है, दो कुत्ते झगड़ते हैं और एक तो उसको लेके भागता है, वो हड्डी को खाता है, अब उसके ही दांतों से, उसके ही मसूड़ों से खून जो आता है, उसको लगता है वो हड्डी से आ रहा है। विषय विकार, ये संसार की जो वस्तु है, मनुष्य सोचता है मैं उसे भोग रहा हूं, परंतु वो उसे भोग नहीं रहा है, वो वस्तु है उसे भोग रही है, उल्टा है। तेन तत्वेन भोग्यता, शास्त्रों में लिखा हुआ है इस संसार की वस्तुओं का उपभोग कैसा करो, इनको त्याग कर। ये मार्ग है उनका स्वाद लेने का, उनको अनासक्त अवस्था। महात्मा गांधी ने अपने बहुत सारे यंग इंडिया के जो एडिटर थे और उसमें लेख जो लिखे हैं, उसमें ये बात बहुत जगह लिखी है, इस श्लोक का भी बहुत जगह वर्णन किया है। तो हमें क्या बनना है, शुभ चिंतक बनिया, किसके प्रति, हर आत्मा के प्रति, चाहे अनजान चाहे ब्राह्मण, हर प्रकार की आत्माओं के प्रति। कल हम अहमदाबाद में थे तो वहां पे सुन रहे थे, भाई साहब लेटे हुए थे, रमेश भाई जी, उन्हें कोई एक समस्या बता रहा था एक भाई, इतनी वो समस्या ऐसी जटिल समस्या थी, वो जब हमने सुनी हमको लगा बाप रे, ऐसी भी समस्या होती है, मतलब हमारे ईश्वरीय केंद्र में ऐसी भी समस्या होती है, और भाई साहब इतनी मतलब वो अवस्था में भी उसका समाधान दे रहे कि ऐसा करो। वो समस्या ऐसी बता रहे थे कि कोई एक सेवा केंद्र है जहां पे कोई एक बहन थी पहले, फिर कोई एक भाई ने जमीन दी, नया सेवा केंद्र बना, फिर वो जो बहन थी वो पुरानी दुनिया में चली गई, उसकी जगह एक नई बहन आई, और जो अभी ये पत्र लिख रही है वो नई बहन उस की सेवा केंद्र में है, उस सेवा केंद्र में रहते अब ये पता चला कि जिस भाई ने वो जमीन दी वो उसकी थी ही नहीं। वो सरकार की जमीन है। वो अतिक्रमण की हुई जमीन है। तो अभी भाई साहब क्या करना चाहिए? सरकार से क्या विनंती करनी चाहिए, सरकार जमीन देने को कैसे तैयार हो जाए, वो भाई तो कहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। मतलब जटिल समस्या है इस तरह की। तो समस्या है केवल उधर नहीं है, इधर भी है,
कंडीशन तो इधर ही है।
तो हमें शुभ चिंतक मणि बनना है, और संसार की जो हालत है, आत्माएं हैं, चिंतामणि आत्माएं, उन्हें चिंताओं से मुक्त करना है, यही हमारी सबसे बड़ी मनसा सेवा है। तो आज हम जीवन की अंतिम सांसें गिन रही ऐसी आत्माएं, मरणासन डाइंग मोरिबंड ऐसे जो पेशेंट कहो, व्यक्ति कहो, उनको सकाश देंगे, क्योंकि उस समय व्यक्ति को अपना सब कुछ याद आता है। जैसे दशरथ का दिखाते हैं ना, जो एक पाप तो भूल चुका था क्या पाप किया, परंतु मरते समय वो याद आ गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। सारे जीवन भर राम राम का, पर अंत में राम नहीं आता है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसी जो मरणासन्न आत्मा है, उन्हें आज हमें सकाश देनी है।